हमेशा की तरह अपनी शिफ्ट करने से पहले दीवा अपने पेशेंट से मिलने जा रही थी। उनमें आर्यांश के मामा मिस्टर सौरभ बजाज भी थे। आर्यांश भले ही फिलहाल शांत हो, पर दीवा को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो काफी जिद्दी था और एक बार जो ठान लेता था वो करके ही देता था। उसने अगर सौरभ को नुकसान पहुंचाने का सोचा था तो वो ये करने ही वाला था। तो दीवा को सौरभ को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता था। दीवा सौरभ के पास आई और मुस्कुराकर पूछा, मिस्टर बजाज, अब आप कैसा फील कर रहे हैं?
मुझे बेहतर फील हो रहा है डॉक्टर, कहीं भी कोई दर्द नहीं है, सौरभ ने काफी प्यार से जवाब दिया।
दीवा ने एक नज़र सौरभ के चेहरे पर डाली। वो हल्का मुस्कुरा रहा था और उससे बात करके काफी पॉजिटिव वाइब आई थी। दीवा सोच में पड़ गई थी कि सौरभ ने आखिर क्या किया होगा जिसकी वजह से आर्यांश उसे मारना चाहता है। उसे सौरभ के बर्ताव में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आई। दीवा को खोया हुआ देखकर सौरभ ने पूछा, डॉक्टर गोयनका, आप क्या सोच रही हैं?
कुछ नहीं मिस्टर बजाज, आप बस आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, दीवा ने सामान्य तरीके से जवाब दिया। वो सौरभ से डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ सकती थी। सौरभ की पोजीशन भी छोटी नहीं थी। कुछ तो बात रही ही होगी जिसकी वजह से कपूर इंटरनेशनल का मालिक उसके मैनेजर से इतना खफा था कि उसे मारना चाहता था।
हाँ क्यों नहीं डॉक्टर, लेकिन आपको बुलाने के लिए मेरे पास आपके नंबर भी होने चाहिए। क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगी? सौरभ ने अचानक पूछा। दीवा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसका नंबर काफी लोगों के पास था, इसलिए उसने अपना बिजनेस कार्ड सौरभ को दे दिया। सौरभ ने नंबर देखने के बाद दीवा से कहा, डॉक्टर गोयनका, आपने मेरी जान बचाई है। अगर फ्यूचर में कभी भी आपको किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा, मैं आपका काम कर दूंगा। वैसे मेरे पास इस तरह का बिजनेस कार्ड और फोन इस वक्त मेरे पास नहीं है। लीजिए अपना फोन दीजिए, मैं अपना नंबर सेव कर देता हूँ। दीवा ने अपना मोबाइल अनलॉक करके सौरभ को दे दिया। नंबर सेव करते वक्त कॉन्टैक्ट्स में सौरभ को आर्यांश का नंबर दिखा। उसने एक नज़र दीवा की तरफ घूर कर देखा। सौरभ ने मन ही मन कहा, तो उन लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, आर्यांश आजकल इस लड़की के साथ घूम रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जरूर कुछ पक रहा है। सौरभ भले ही अस्पताल में हो, लेकिन उसने आर्यांश के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थी। सौरभ का डाउट क्लियर हो जाने पर उसने दीवा को उसका मोबाइल लौटा दिया। दीवा ने उसे थैंक्स कहा और फिर वहां से चली गई। वो काफी मासूम थी। सौरभ बजाज जैसे चालाक आदमी के बारे में बुरा सोचना या पता लगाना उसके बस की बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश कपूर इंटरनेशनल में अपने केबिन में बैठकर बात कर रहा था। उसने बाहर किसी के तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसके हाथ रुक गए। उसके चेहरे के भाव सर्द होने लगे। उसे शांति पसंद थी और इस वक्त कोई उसकी शांति में खलल डाल रहा था। आर्यांश ने गुस्से में अपना हाथ पटका और फिर उठकर बाहर आया। उसने अपनी हेड सेक्रेटरी वंशिका राठी से पूछा, ये कैसा शोर हो रहा है?
एक्चुअली सर, वो मिस रॉय बाहर हैं और उन्होंने ही हंगामा मचा रखा है, वंशिका ने जवाब दिया।
वंशिका राठी यूनिवर्सिटी में आर्यांश की सीनियर थी। उसने आर्यांश की काफी मदद भी की थी, तो स्टडी कंप्लीट होते ही आर्यांश ने उसे अपने यहाँ उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अच्छी जॉब दे दी थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो आर्यांश उसे इतनी तमीज से बिल्कुल नहीं पूछता। आर्यांश और वंशिका आपस में बात कर रहे थे कि तभी नितारा भीड़ को हटाते हुए आगे पहुंची। वो उनकी हेड मॉडल थी। उसने रेड कलर का बॉडीकॉन ड्रेस पहना था जिसके एक साइड लंबा स्लिक था। वो काफी हॉट नजर आ रही थी। सब जानते थे नितारा कितनी बदतमीज है। काम के वक्त आर्यांश डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करता था, इसी वजह से वंशिका ने उसे आगे नहीं आने दिया था, लेकिन वो गार्ड्स को हटाकर आगे पहुंच गई थी। आर्यांश को अपने सामने देखते ही नितारा के चेहरे के भाव नर्म पड़ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यांश, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी ये सेक्रेटरी मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही। कितने दिन हो गए हमें मिले हुए, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। नितारा एक्टिंग कर रही थी और उसे देखकर वंशिका ने अपना मुंह बना दिया। उसे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। आर्यांश का काम डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से वो काफी गुस्से में था। उसने उसी सख्ती से कहा, मेरे पीछे आओ। नितारा की बातों को और ही तरीके से लिया। उसने वंशिका की तरफ देखकर मुंह बनाया और फिर आर्यांश के पीछे उसके केबिन में जाने लगी। केबिन के अंदर आते ही आर्यांश सोफे पर किंग की तरह हाथ फैलाकर बैठ गया था। नितारा को लगा कि वो उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। एक वक्त था जब नितारा काफी अच्छा वायलिन बजाती थी, लेकिन फिर उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। सब जानते थे कि अगर उसे आर्यांश का साथ नहीं होता तो वो एक दिन भी नहीं टिक पाती। आर्यांश का साथ होने की वजह से ही वो सबसे काफी बदतमीजी से पेश आती थी। नितारा आर्यांश की गोद में जाकर बैठ गई थी। वो उसकी दिलकश खुशबू को महसूस कर पा रही थी। नितारा का हाथ उसके सीने पर चल रहा था। उसने घोष आवाज में कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना आर्यांश? नितारा अपने गालों को आर्यांश के गालों से रगड़ने लगी। उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी आर्यांश के चेहरे के भाव अभी भी उतने ही कठोर थे और वो सामने की तरफ देख रहा था। आर्यांश, बताओ ना, तुम्हें मुझसे प्यार है ना? नितारा ने एक बार फिर पूछा। वो उसे सिड्यूस कर रही थी। प्यार क्या होता है? आर्यांश ने सर्द आवाज में जवाब दिया। आर्यांश ने नितारा के करियर में उसे काफी हेल्प किया था, तो उसे गलत फहमी हो गई थी कि वो उसे पसंद करता है। नितारा ने अपना सर आर्यांश के सीने से हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, प्यार वो होता है जो मैं तुमसे करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो मैं क्या करूँ? आर्यांश ने कठोरता से कहा। आर्यांश, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते? नितारा बोली, बिल्कुल, आर्यांश ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक सस्पिशियस स्माइल थी जिसे शायद सिर्फ वही जानता था। आर्यांश का जवाब सुनकर नितारा की आंखों में चमक आ गई थी। उसने झट से कहा, ठीक है, तो फिर हम शादी कर लेते हैं। तुमसे शादी? क्या तुम इसके लायक हो कि तुम मेरी वाइफ बन सको? आर्यांश ने सर्द आवाज में कहा। एक पल के लिए वहां बिल्कुल शांति छा गई थी। नितारा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल होने लगा था। नितारा ने कांपती आवाज में कहा, आर्यांश। अगले ही पल आर्यांश ने उसे खुद से दूर धकेला। उसने काफी बेरुखी से कहा, अगर मैं तुम्हें फर्श से आसमान तक पहुंचा सकता हूं तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें वापस नीचे गिराने में। आर्यांश सीधे सीधे उसे बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, जिसे सुनकर नितारा वहीं पर जम गई थी। उसने आर्यांश से इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। मुझसे कोई गलती हो गई क्या आर्यांश? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नितारा ने नम आंखों से कहा। नितारा की एक्टिंग देखकर आर्यांश मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। बीते सालों में उसकी एक्टिंग काफी सुधर गई थी। शुरुआत में उसे उसमें इंटरेस्ट था क्योंकि वो उसी की तरह वायलिन बजाया करती थी, लेकिन नितारा वो कभी नहीं बन सकती थी जिसे आर्यांश चाहता था। आर्यांश ने नितारा को नाम, फेम सब दिया, लेकिन अब वो हद से ज्यादा बढ़ रही थी। आर्यांश ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, तुम वो कभी नहीं बन सकती हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नितारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नजर आर्यांश की तरफ देखा और फिर अपना बैग उठाकर भागते हुए वहां से चली गई। इतनी शर्मिंदगी उसने कभी महसूस नहीं की थी। वहीं उसके जाते ही आर्यांश सोफे पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर थकान थी। आर्यांश ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने इस लड़की का चेहरा आ रहा था। वो म्यूजिक से प्यार करती थी, ऐसे लगता था म्यूजिक उसके इशारे पर नाचता।
आर्यांश के दिमाग में एक एक करके उस लड़की की यादें ताजा होने लगी, जब वो दोनों साथ में पियानो बजा रहे थे, बारिश में भीग रहे थे और डांस कर रहे थे। सब बदल गया और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम इस वक्त जरूर स्वर्ग में होगी और खुश होगी, आर्यांश ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जो आर्यांश कपूर अपनी ताकत के दम पर कुछ भी कर सकता था, आज वो इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की को उसने बेइंतहा चाहा, वो उसे नहीं बचा पाया और वो मर गई। ना उसकी ताकत काम आई और ना ही उसका प्यार।